ओम शांति। हम सभी के बीच में दिलाराम बाबा के दिल तक नसीन और दिल से दुआएं सदा प्राप्त करने वाले, दिल से मेरा बाबा गीत गाने वाले, दिल के स्नेह में दिल रुबा बन समाने वाले, नम्रचित निरहंकारी बन सेवा करने वाले, तन के कष्ट को मिटाने वाले, सर्व के दिल की बाप दादा से दिल को जुड़ाने वाले, दिल खुश सर्व को दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, दिल के चिकित्सक आदरणीय भ्राता डबल डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत इस सभा में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भ्राता जी, आपने दिल्ली में अपनी मेडिकल की पढ़ाई की, हृदय रोग चिकित्सक संबंधी आप अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सोल माइंड मेडिसिन के नवीनतम विचारधारा के रिसर्च वर्क पर आपको 2000-2001 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से आपको अवार्ड मिला हुआ है। इस बात से ताली जरूर बजाएंगे। सन 2000 में यूएसए में होलिस्टिक हेल्थ केयर पर आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। आप 27 साल से बाबा के ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त किया हुआ है, उन पालनाओं में पल रहे हो। आप मधुबन बेहद भूमि में 18 साल से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हो। आपका परम सौभाग्य है कि आप विशेष हमारी परम आदरणीय परम सम्माननीय दादी जी के स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल दिल व जान सिख व प्रेम से आप करते हैं। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए आप सदैव नई नई इन्वेंशन भी करते हैं। दिल की यही तमन्ना है, दिल की यही आरजू है, नजरों के सामने हो बस बाबा तू ही तू है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के द्वारा 2006 में आपको सम्मानित किया हुआ है। इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंसी इन मेडिसिन फॉर द 21st सेंचुरी अवार्ड आपको 2005 में यूएनओ के द्वारा भी प्राप्त हुआ है। और विशेष खुशी की बात साथ में ये है कि अव्यक्त बाप दादा बहुत अच्छी तरह से ब्राता जी को मुरली में भी याद किया हुआ है, क्योंकि हृदय रोग के चिकित्सक होने के नाते विश्व के राज्यों के अभ्यासी और नॉन बी के अनेक भाई बहनों की जीवन श्रेष्ठ आपने बनाई है, नया जीवन दान दिया है। तो प्यारे अव्यक्त बाप दादा भी आपको याद करते हैं, वो अमूल्य रत्न अभी हम सभी के सामने है। तो अनुरोध करती हूँ आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हम सभी के बीच में ज्ञान रत्न से हमारी झोली भरेंगे। आज का आपका विषय है चेहरे और चलन के द्वारा हम बाप दादा को कैसे प्रत्यक्ष करें। आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी,
पिछले कुछ वर्षों से और विशेषता इस वर्ष से बाबा की यही प्रेरणा है हम बच्चों के लिए कि अभी सुनने सुनाने का समय क्या हो गया, समाप्त होता जा रहा है या समाप्त हो गया है। बाबा भी देखो अभी आते कितना बोलते हैं, पहली लाइन में याद प्यार, खुश नसीब खुश किस्मत खुशनुमा बच्चों को बाप दादा की याद प्यार। तो पापा भी जैसे अभी समय की निशानी समय की घंटी बज रही है और बाबा बार बार कह रहे हैं बच्चे अभी पहली मुरली में बाबा ने बड़ा क्लियर बताया, बच्चे अभी सुनने सुनाने का समय खत्म हो गया है और अभी किस द्वारा सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी है, वृत्ति द्वारा वृत्तियों को बदलना है, अपनी वृत्ति द्वारा दूसरों की वृत्तियों को बदलना है। लास्ट ईयर की मुरली में बाबा ने बहुत इस पे एम्फेसाइज किया कि बच्चों अभी आपको अपने चेहरे और चलन से सेवा करने की, सुनने सुनाने का समय किसी के पास नहीं रहेगा, क्योंकि आज अपने बाबा के बच्चे भी ज्ञान में तो बहुत परफेक्ट हो गए, ज्ञान में तो बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, किंतु जहां अपनी जो समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उन समस्याओं को, क्योंकि योग बल ना होने के कारण, धारणा का बल ना होने के कारण, कई बार ज्ञान तो हम बहुत अच्छा सुना सकते हैं, क्लास भी करा सकते हैं, किंतु योग बल और धारणा का बल ना होने के कारण, दुआओं का बल जमा ना होने के कारण, तो क्या होता है, पुण्य का खाता जमा ना होने के कारण उन समस्याओं में हम विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और रिएक्शन कर देते हैं। तो आज हमें आवश्यकता है कि हम अपना चेहरा और चलन, चेहरे का अर्थ क्या है, चेहरा माना, चेहरा किसका, किसका दर्पण है, मन का दर्पण है, जो मन में होता है वो चेहरे पे दिखाई देता है, जो भी मन में है वो चेहरे पे दिखाई देता है। अगर मन में खुशी है तो चेहरे पे क्या दिखाई देगी, खुशी दिखाई देगी। अब मन में किसी बात का दुख है तो क्या दिखाई देगा, चेहरे पे क्या दिखाई देगा, दुख या उदासी दिखाई, गुस्सा होगा मन में तो चेहरे पे दिखाई देगा ना, नहीं ऐसा होता है, नहीं होता, क्योंकि आज किसी भी इंसान को हम मिलते हैं ना, उसको नमस्ते करते हैं या उसको विश करते हैं या मुस्कुरा के मिलते हैं, वो भी मुस्कुरा के एक बार मिल लेता है, कि तो मुस्कुराने के बाद फिर क्या होता है, वापस फिर अपने सागर में, दुखों के सागर में, फिर उसका चेहरा देखो तो उदास हो जाता है, क्योंकि जो हमारा मन है ना वो बहुत ही गहरा, सागर के समान गहरा है, तो उसमें जो स्मृतियां जो हमारी रिकॉर्ड हैं वो बहुत लंबे समय की हैं, तो उसी बात पर हम गहराई से समझेंगे कि आज मन को कैसे परिवर्तन करें, क्योंकि मन परिवर्तन होगा चेहरा परिवर्तन होगा, इस चेहरे के द्वारा ही हम, जैसे बाबा देखो अभी 15 दिसंबर को जब बाबा आए तो बाबा के आते क्या हो गया, हॉल में क्या हो गया, बाबा का चेहरा देखते ही, बाबा का अवतरण होते ही क्या हुआ, सारे हॉल में सबको क्या हो गई, खुशी छा गई ना। तो चेहरे के द्वारा बाबा ने बोला तो बहुत थोड़ा सा, बाबा ने तो बल्कि बाबा जैसे लगता था बोलेंगे नहीं, है ना, बाबा बस हाथ से वरदान दे रहे हैं और सबको दृष्टि दे रहे हैं, है ना, तो उसी से सब बहुत भरपूर हो गए, जैसे सारी बातें बाबा ने अपने चेहरे के द्वारा ही कह दी, सबकी सेवा हो गई। तो चेहरा जो है, ऐसा चेहरा हमारा सबका बने, बाप समान बनने का अर्थ क्या है, हमारा चेहरा भी जैसे बाबा का चेहरा ऐसा बन जाए, सदा खुशियों से भरपूर। बाबा ने ये कहा ना इस बार, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। और एक बाबा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो लास्ट में बाबा ने कही, सदा देव भान से न्यारे, सदा सर्व के प्यारे, बाप को दिल में समाते हुए हर कदम उठाना। जैसे बाबा अपनी डायरेक्शन कहें, श्रीमत कहें, बाबा हमें देखे गए सदा सर्व के प्यारे, सदा देवान से न्यारे, बाप को दिल में समाते हुए क्या करना, हर कदम उठाना। तो ये जो है बाबा की डायरेक्शन रही हम लोग बच्चों के लिए। तो मन जो है हमारा, तो चेहरा माना मन, ठीक है, अभी मन के विस्तार में हम जाएंगे, और चलन माना कर्म, चलन माना कर्म, और कर्म भी किस आधार पे होते हैं, कर्म किस आधार पे होते हैं, वो भी मन के आधार पे होते हैं। तो अगर हमारा मन एकदम से सत्व प्रधान बन जाए, मन एकदम सुंदर बन जाए, पवित्र हो जाए, तो क्या होगा, हमारा चेहरा और चलन कैसा बन जाएगा, बाप समान बन जाएगा, और चेहरे और चलन के द्वारा ऑटोमेटिक सेवा होगी, मनसा सेवा, मन द्वारा सेवा होगी ना, मन द्वारा सेवा माने मनसा सेवा, टॉपिक एक्चुअली मनसा सेवा है ना, पर चेहरे और चलन द्वारा मनसा सेवा हो सकेगी, राइट। और कितनी दूर तक हम सेवा कर पाएंगे इसका भी हम इसी द्वारा निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम मन की बात करें, क्योंकि मन को, मन में सारा जो बात हुई है बेसिकली, देखो तीन आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो बुद्धि में तो बाबा ने ज्ञान डाल दिया है, जो ज्ञान दिया है कहां पे गया हमारा, वो ज्ञान कहां पर गया है, बुद्धि में गया है। ये दिव्य ज्ञान, नया ज्ञान, परमात्म ज्ञान कहो, राजयोग की विद्या कहो, ये सारा कहां गया, बुद्धि में, और उससे हमारी बुद्धि दिव्य बन गई है। अब हमें क्या परिवर्तन करना है, दो चीजें हमें परिवर्तन करनी है, मन और संस्कार। बाबा कभी मन को नहीं बदलता है, बुद्धि में ज्ञान डाल देता है, अब उस दिव्य बुद्धि को यूज करके अपने, हमें अपने मन को और संस्कारों को परिवर्तन करना है, वो हमारा काम है। यही पुरुषार्थ है कि हमें मन को परिवर्तन करना है और अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, और उस दिव्य बुद्धि को यूज करके करना है। अभी भी हमारे अंदर आसुरी बुद्धि भी है और दिव्य बुद्धि भी है, किंतु अभी बाबा का बच्चा बनने के बाद हमें क्या करना है, कौन सी बुद्धि को यूज करना है, दिव्य बुद्धि को यूज करना। अभी भी वो पुराने संस्कार हमारी बुद्धि पर असर डालते हैं, बार बार आसुरी बुद्धि को जागृत करेंगे, शूद्र बुद्धि को जागृत करेंगे, है ना। अभी भी बार बार वो पुराने मन के अंदर जो स्मृतियां हैं, जो वृत्ति भावनाएं और संकल्प है, वो इसको जागृत करने की कोशिश करती है। किंतु जो नियम और मर्यादाओं में रहता है, ब्राह्मण जीवन की नियम और मर्यादाओं में रहता है, वो फिर इनसे बच सकता है। चलिए हम थोड़ा मन की गहराई पर चलते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कैसे इसको हम परिवर्तन करें, कैसे अपने मन को रोज चेक करें, ताकि हमारा मन एकदम, फरिश्ते जो होते हैं ना, उनका मन एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। शीशा होता है ना, ऐसे ग्लास होता है, ग्लास के माफिक आर पार देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं फरिश्ता क्या, फरिश्ते का शरीर कैसा होता है, लाइट की बॉडी होती है ना, एकदम लाइट की बॉडी, कुछ भी छिपा हुआ नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो मन, आप सभी जानते हैं, मन को बाबा ने बार बार उसकी व्याख्या की है मुरलियों में, समय समय पर मुरलियों में बाबा ने बताया। मन खाली सोचने की शक्ति नहीं है, ऐसे तो हम कहते हैं बुद्धि निर्णय करने की शक्ति है, मन सोचने की शक्ति है, और संस्कार, जो चीज हम बार बार करते हैं हमारे संस्कार बन जाते हैं, मतलब संस्कार बना आदत, हैबिट बन जाती। वैसे मन में, बाबा ने बार बार बताया कि मन में चार बातें होती हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। स्मृति, तो ऐसे आज का वरदान हमने सुना, जैसी स्मृति वैसी स्मृति, जैसी स्मृति, स्मृति से समर्थि आती है, स्मृति से स्थिति बनती है। स्मृति माना अंग्रेजी में कहते हैं मेमोरी, यादें, स्मृति को हिंदी में कहें, सिंपल भाषा में तो याद भी कह सकते हैं, यादें जो हमारी मेमोरीज रिकॉर्ड होती है। एक बात आपको सबको पता हो कि ये पांच कर्मेंद्रियां हैं हमारी, आंख, नाक, कान, मुख और ये त्वचा, पूरी त्वचा जो हमारे पूरे शरीर के ऊपर है, अंदर भी, मुंह के अंदर भी है, सांस की नाली में भी है, पेट की नाली में भी है, है ना, खून की नालियों में भी त्वचा है, वो अंदर की त्वचा है। ये जो त्वचा है सेंस करती है जो कुछ भी हमारे आसपास है, या पेट में है, या सांस की नाली में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, खून में बुरा कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल बहता है, और बहुत सारे केमिकल्स बहते हैं, ब्लड तो ट्रांसपोर्ट मीडियम है, तो उसको सेंस करती है दीवारें, अंदर की दीवार, आंखों से देखते हैं, आंखों से एक्सप्रेस भी करते हैं, नाक से सूंघते हैं, नाक से एक्सप्रेस भी करते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से खाते हैं और बोलते भी हैं। तो ये पांच कर्मेंद्रियां दुनिया से हमें कनेक्ट करती हैं। तो मन में क्या चीज है, तो पहली बात है स्मृति माने मेमोरीज, और फिर दूसरी बात है वृत्ति। ये चार एस्पेक्ट है मन के, चार इसके मतलब इसके रूप कहो, मन के चार रूप हैं। दूसरा है वृत्ति, वृत्ति माना दृष्टिकोण या नजरिया हिंदी में कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं एटीट्यूड, और भावनाओं को इंग्लिश में कहते हैं इमोशंस, भावनाएं, और संकल्प को अंग्रेजी में कहते हैं थॉट्स, विचार। तो अगर इसको इंग्लिश में लिखें, अगर हम उल्टा करके पढ़ते हैं, तो क्या बन जाता है, thoughts, emotions, attitudes and memories. तो क्या बन गया? पहला अक्षर ले तो लो, क्या बनेगा? TEAM. तो मनमाना क्या हो गया? टीम. मनमाना टीम. थॉट्स माना संकल्प, इमोशंस माना भावनाएं, ए फॉर एटीट्यूड्स माना वृत्ति, और एम माना मेमोरीज माना स्मृति, यादें. तो मन माना टीम. तो जैसी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति होती है. मुझे स्मृति है कि मैं बाबा का बच्चा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं. शिव बाबा कौन है? भगवान है. मैं कौन हो गया? मास्टर भगवान, है ना. वो गॉड है, हम कौन बन गए? बाबा के बच्चे, मास्टर गॉड. तो जैसी स्मृति होगी वैसी हमारी स्थिति आएगी, स्थिति बन जाती है. बाबा कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तुम कौन हो मेरे बच्चे? मास्टर सर्वशक्तिमान. मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम कौन हो? मास्टर ज्ञान के सागर. तो जैसा हम अपनी स्मृति में उन मेमोरीज को इमर्ज करते हैं या उसे रिवाइज करते हैं, मनन, रिवाइज करना माना मनन करना, जितना उसको रिवाइज करते हैं वैसे हमारी स्मृति पक्की होती जाती है. तो स्मृति से स्थिति बनती है. हम ऐसा फील करने लगते हैं सचमुच में मैं ये हूं, क्योंकि अभी स्मृति हमें क्या थी? मैं तो एक आम इंसान हूं, या मैं एक डॉक्टर हूं, या मैं एक पिता हूं, या मैं एक पत्नी हूं, या एक मां हूं, है ना. यही स्मृतियां थी, लौकिक स्मृतियां थी ना. देह के आधार पर स्मृतियां थी, या जो हमारा समाज में लेबल लगाया ना समाज ने, डॉक्टर का, इंजीनियर का. कोई पैदा तो नहीं होता डॉक्टर, पैदा होते हैं क्या? बिजनेसमैन पैदा होते हैं क्या? इंजीनियर पैदा होते हैं क्या? कोई मां पैदा होती है कभी? कोई मां पैदा हुई है आज तक? कोई बाप पैदा हुआ है, या पति पत्नी पैदा हुए? ये तो एक लेबल मिलता है समाज से, है ना. समाज से लेबल मिलता है, जो हम काम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से लेबल मिल जाता है. तो लेबल को हम समझ करके, अपना समझ करके, उसी कॉन्शियसनेस में अपने को वही समझ लेते हैं और फिर उसी लिमिटेशन में रहते हैं. तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, जब स्मृति आई कि मैं आत्मा हूं, सबसे पहली स्मृति क्या आई? मैं कौन. दूसरी स्मृति क्या आई? बाबा ने आके क्या दी? मेरा कौन, है ना. तो ये जब स्मृति आई कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, दोनों व्यक्तियों के मध्य बैठी हूं यहां पर, और अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा के संतान हूं, तो ये स्मृति आई तो क्या हुआ? तो ये स्मृति के आधार पर मेरी स्थिति बन गई. नहीं तो मेरी स्मृति क्या थी? कि मैं तो देह हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, मेरा पता नहीं क्या होगा, बूढ़ा हो, अभी तो शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, ये हो गया, घुटने खराब हो गए, कमर खराब हो गई, अब ना जाने कौन कौन सी बीमारियां आएंगी, हार्ट की बीमारी हो गई, है ना, सांस ठीक नहीं आता, है ना. नहीं तो उस स्मृति के आधार से क्या होगा? फिर वैसी हमारी वृत्ति, फिर हमारा वैसे एटीट्यूड बन जाएगा, है ना. तो स्मृति के आधार पर हमारी वृत्ति बनती है, एटीट्यूड. वृत्ति माना जो चीज हम बार बार सोचते रहते हैं ना, वो स्मृति बार बार इमर्ज होती है. वृत्ति माना सर्कल. वृत्त से शब्द वृत्ति आया है. जो चीज हम बार बार सोचते रहेंगे ना, वो स्मृति इमर्ज होती रहेंगी, हम बार बार वैसे सोचेंगे. जैसे आपको कोई दर्द हो गया, कहीं हार्ट में दर्द है, तो बार बार दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो क्या होगा? कैसी एटीट्यूड हो जाएगा? मैं तो हार्ट पेशेंट हूं, मैं तो हार्ट पेशेंट हूं, मैं तो हार्ट पेशेंट. नहीं, किसी नॉर्मल आदमी को बता दो तुम हार्ट पेशेंट हो, उसकी ईसीजी देख के बता दो, हार्ट गलत बता दो उसको, तुम्हारा हार्ट का ईसीजी खराब आया, वो बार बार सोचेगा मेरे को, मैं तो हार्ट पेशेंट हूं, मैं तो हार्ट पेशेंट, मैं तो हार्ट पेशेंट. उसकी चाल कैसी होगी? उसका चलने वाला तरीका कैसा बदल जाएगा? उसकी चाल बदल जाएगी, है ना, उसका चलने का तरीका बदल जाएगा. नहीं, नहीं बदलता. कोई झूठ मूठ बता दे आपको, है ना, तो वो आपकी वृत्ति बदल जाती है. ठीक है, आपका वायुमंडल, और वृत्ति से वायुमंडल बनता है. तो स्मृति से स्थिति बनती है, और स्थिति से समर्थि आती है, और फिर अगर उस तरह से देखें, उसी लाइन में देखें, स्मृति से वृत्ति बनती है और वृत्ति से वायुमंडल. स्मृति मेरे अंदर ही होती है, स्मृति का असर मेरे अंदर ही, स्थिति मेरी अंदर ही बनती है, और वृत्ति का असर कहां तक होता है? वृत्ति से वायुमंडल. जैसे मैं इस हॉल में बैठा हूं, इस हॉल में जो बैठा हूं, तो यहां का वायुमंडल जैसा जो व्यक्ति होगा ना, पॉजिटिव वृत्ति वाला होगा तो वायुमंडल कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. और नेगेटिव वृत्ति वाला व्यक्ति होगा तो आसपास वातावरण कैसा, वायुमंडल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है ना। तो वृत्ति का असर कुछ मीटर तक हो सकता है, 10 मीटर तक, 20 मीटर तक, 50 मीटर तक, 100 मीटर तक हो सकता है ना। जिस जगह वो व्यक्ति है उसके आसपास का वायुमंडल बदल जाता है। जैसे हमारी दादियां आती हैं, दादी जी आती हैं, दादी जानकी जी आती हैं, या और दादियां आती हैं, गुलजार दादी जी आते हैं, तो उनकी वृत्ति कैसी है? सबके प्रति आत्मिक रूहानियत की वृत्ति है, सब मेरे भाई बहन है, सब बाबा के बच्चे हैं। तो कैसा वायुमंडल हो जाता है? सारा सारा सारे हॉल का वायुमंडल कैसा हो जाता है? आत्मिक रूहानियत वाला हो जाता है ना। सब देवान भूल जाते हैं अपना, नहीं होते। बाबा जब आता है, बाबा को क्या है? सब मेरे मीठे बच्चे हैं, सब मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, है ना। तो सारा वातावरण में क्या? प्यार का वातावरण सब जगह हो जाता है, नहीं होता ऐसा? होता नहीं होता। तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है, राइट। और फिर वृत्ति से भावना पैदा होती है। वृत्ति से क्या पैदा होता है? भावनाएं पैदा होती हैं। तो जैसी वृत्ति वैसी भावना। और भावना का असर कहां तक होता है? भावना का असर हजारों मीलों तक होता है। कितने मील तक होता है? दो व्यक्तियों के बीच में भावना काम करती है ना। आप यहां बैठे हैं और दूसरा व्यक्ति यहां से 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, दिल्ली में बैठा है, या मद्रास में बैठा है, चेन्नई में बैठा है, या अमेरिका में बैठा है, जिससे आपका संबंध है, एक मां और बच्चे का संबंध है, तो भावना दोनों के बीच में काम करती है। मां बैठे बैठे सोचती रहेगी कि मेरे बच्चे को ये अब ये लगा होगा, मेरा बच्चा भी क्या कर रहा होगा, है ना। भले वो बच्चा बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया, आज उसका एग्जाम होने वाला है, आज उसकी ये होने वाला है, तो उसको टच होता जाएगा, ठीक है। और बच्चा सोचेगा मां के बारे में तो क्या होगा, उसको टच होगा। इसको बोलते टेलीपैथी, है ना। क्या कहते हैं इसको? तो भावना से वाइब्रेशन बनते हैं, ठीक है। और फिर भावना के आधार पर संकल्प उठते हैं। जैसी भावना होती ना, फिर वैसे संकल्प उठते हैं, ठीक है, विचार उठते हैं। और संकल्प का असर कहां तक होता है? कहां तक होता है? सारी सृष्टि पर होता है। कहां तक होता है? सारे सृष्टि पर, सारे विश्व पर उसका असर होता है। हर मनुष्य आत्मा पर उसका असर पड़ता है। डेफिनेटली जो उसके व्यक्ति उसके आसपास, उस पर ज्यादा असर पड़ता है, और किंतु वैसे सारे विश्व पर असर पड़ता है, सारे विश्व की आत्माओं पर, सब मनुष्य आत्माओं पर, प्रकृति के पांचों तत्वों पर, पूरी धरती पर, पूरे समुद्र, नदियां, सागर, पूरे वायु पर, 8-10 किलोमीटर तक जहां तक वायु वहां तक, और फिर जितने भी सूरज, चांद, तारे जितने भी हैं सब पर, और फिर उसके अलावा कहां तक? आकाश तक, पूरे। तो पांचों तत्वों पर उसका असर होता है, और इस पर भी असर होता है संकल्पों का। सबसे पहले पांच तत्व कहां पर है? कहां पर है? शरीर किसका बना हुआ है? भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, पांच तत्वों का बना ना। तो ये पांचों तत्व पर सबसे पहले इस पर असर होता है। इसलिए देखा होगा आपने, जब जैसा संकल्प करते हो वैसा तन पर तुरंत असर आता है, थोड़ी देर में असर आता है, आता नहीं आता है? आप संकल्प करो, कोई नेगेटिव संकल्प करो, तुरंत सिर में दर्द हो जाएगा, है ना, भारी हो जाएगा सिर, तकलीफ हो जाएगी, है ना, दर्द पैरों में, कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। और अच्छा संकल्प करो तो क्या होगा? खुशी का संकल्प करो तो क्या होगा? दर्द भाग जाएगा, नहीं होगा? होता है कि नहीं होता है? तो संकल्पों का असर सारे विश्व पर होता है, इवन पेड़ पौधों पर भी होता है। जो पेड़ पौधे आपके घर में पेड़ पौधे उगे होते हैं ना, आसपास भी, उन पर भी असर होता है। आपने देखा होगा आपके पेड़ पौधे, देखो अभी ज्ञान सरोवर था ना, ज्ञान सरोवर पहले जंगल था बिल्कुल, जब ज्ञान सरोवर की जमीन दादी जी ने ली तो उस समय हमने देखा जंगल बिल्कुल जंगल था, कुछ भी नहीं था, भालू घूमते थे वहां, भालू और क्या होते हैं वो, लेपर्ड्स, है ना, चीते घूमते थे, और झाड़ियां ही झाड़ियां थी, कुछ उगता नहीं था वहां पर। और आज देखो तो वहां पर क्या क्या उगता है, इतने सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष हैं, शांतिवन जंगल था। आज शांतिवन में क्या होता है? कितने बढ़िया बढ़िया आम के पेड़ हैं, तरह तरह के पेड़ हैं। मनमोहिनी वन में देखो, खाद डालते हैं, पानी भी डालते हैं, सब कुछ, किंतु उसके बावजूद भी उन वाइब्रेशन का असर बहुत अच्छा होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है, उन संकल्पों का असर होता है। यहां पर शांतिवन में कोई आता है, नॉन बीके आते हैं, पहली बार बाबा के घर में आते हैं, जानते नहीं बाबा कौन है, हार्ट के पेशेंट्स दुनिया भर से आते हैं यहां पर, इलाज कराने आते हैं, कैड के प्रोग्राम में आते हैं, तो उन्हें अभी ज्ञान का कुछ पता नहीं होता, एबीसीडी भी पता नहीं होता, किंतु आते ही उनको क्या फील होती है, आते ही अंदर आते ही क्या फील होता है, शांति के वाइब्रेशंस, मन शांत हो जाता है, संकल्प चलने बंद हो जाते हैं। कैसे होता है? दीवारों से निकलते हैं क्या वाइब्रेशन? शांति मन की दीवारों से वाइब्रेशन निकलते हैं क्या? नहीं, शांति के वाइब्रेशन किससे निकल रहे हैं? यहां रहने वाले जो भाई बहन हैं, हमारी दादियां हैं, हमारे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन है, छोटे भाई बहन जो भी हैं, जितना पुरुषार्थ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना योग करते हैं उसके वाइब्रेशन फैलते हैं, उनसे वायुमंडल बनता है, वृत्ति वृत्ति से वायुमंडल बनता है, भावनाओं से वाइब्रेशन बनते हैं, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना, सब बाबा के बच्चे बन जाए, सबको बाबा का संदेश मिल जाए, सबको बाबा का परिचय मिल जाए, यही भावना के वाइब्रेशन वो जो कैच करते हैं। और संकल्प शांति के संकल्प चलते हैं, प्यार के, रूहानी प्यार के संकल्प चलते हैं, अतिंद्रिय सुख के संकल्प चलते हैं, तो वो जो है वो सब लोग कैच करते हैं। इसलिए कोई भी बड़े, आज बताया ना चीफ जस्टिस आए थे, वो वहां के आए थे ना अभी वेस्ट इंडीज कैरिबियन कंट्रीज के, उन्होंने क्या अनुभव सुनाया अपना, ये संसार अलग ही संसार है, दुनिया से अलग संसार है ना? तो ये जो है आखिर हर आदमी जो पहली बार आता है वो फील करता है। कई बार हम बाबा के बच्चे कई बार इतना महसूस नहीं कर पाते, जैसे भूखा होता है ना, कोई बहुत भूखा प्यासा हो उसको थोड़ा पानी मिले पीने तो क्या होता है, उसको एकदम शांति पड़ जाती है ना, कि तो जो पहले ही उसका पेट भर गया हो, ना प्यास हो ना भूख हो, उसको क्या लगता है, भले पानी पड़ा हो भले खाना बहुत रखा हो, उसको क्या लगता है मेरे किस काम का है, मेरा तो पेट भरा हुआ है ना। तो हम भले इतना ना फील करें किंतु दूसरे लोग बहुत फील करते हैं। आप जो अपने घरों से आते हैं आप लोग फील करते हैं, फील करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं? करते हैं ना। तो स्मृति वृत्ति भावना और ये मन, तो ये एक तो हमारा कॉन्शियस मन है जो इस जन्म का है, इस जन्म में जो कुछ हम करते हैं ना वो कॉन्शियस मन कहलाता है। जो पिछले 84 जन्मों में हमने जो किया उसमें वो जो कुछ हो गया, पहले के जन्म तो हमने अच्छे कर्म ही किए, अकर्म थे वो तो, प्रहलाद थी, और फिर जब 63 जन्म जो लास्ट के थे उसमें हमने क्या किया, देह अभिमान के वश, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश, कर्म क्या होते हैं, कर्म वो होते हैं, देखना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, और सुनना भी कर्म है, छूना भी किसी कर्म है, तो ये कर्म कहलाते हैं। इन 5 कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कुछ हम करते हैं वो कर्म कहलाते हैं। कई लोग कहते हैं हमने हाथ से कर्म थोड़ा किया, हमने सिर्फ देखा ही ना, हमने सिर्फ बोला ही ना, हमने सिर्फ गलत खा लिया ना, गलत सुना, ये भी कर्म है, ये भी अंदर रिकॉर्ड होता है, राइट? ऐसा नहीं समझना कि देखना कर्म नहीं है, है ना। कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी करते हैं वो कर्म कहलाते हैं, जो विकारों के वश होकर कर्म करते हैं वो विकर्म कहलाते हैं, ठीक है। और जो बाबा की श्रीमत पे हम कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं या सुकर्म कहलाते हैं, और सत्युग में जो कर्म करते हैं वो अकर्म कहलाते हैं। अकर्म माना वो हमारी प्रलब्ध है, पहले कमाया हुआ है वो खा रहे हैं, उसका कोई सजा नहीं मिलती, उसका कोई मतलब नुकसान भी नहीं, फायदा भी नहीं, खर्च कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, वो अकर्म कहलाते हैं। तो ये जो हम 63 जन्म में हम जो करते आए हैं वो हम विकारों के वश होकर काम करते आए हैं, काम विकार के वश, क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश, ये विक्रम बन गए और ये अंदर रिकॉर्ड हो गए। ये जो है हमारा अनकॉन्शियस मन बन गया। क्या बन गया हमारा? अनकॉन्शियस, जिसे अचेतन मन कहते हैं, सोया हुआ मन, सुषुप्त मन। और ये मन जो है, सुषुप्त मन जो है, इसकी छाया इस जीवन पे पड़ती है। जो हमने पिछले जन्म में जो भी जिनके साथ किए ना, वही छाया का मतलब क्या है, वही हमें उसी अनुसार हमें इस जन्म में माता पिता मिले, भाई बहन मिले, युगल मिले, पति या पत्नी मिले, या बच्चे मिले, या दोस्त मिले, या बिजनेस मिला, जो भी मिला इस जन्म का पिछले के हिसाब से मिला है, उस पिछले जन्मों कर्मों के अनुसार, उस मन के अनुसार, सुषुप्त मन के अनुसार। तो आज जो भी हमारे संबंधी हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, चाहे हम सेंटर पर भी रहते हैं, चाहे हम कहीं भी रहते हैं, भाई बहन कहीं भी रहते हैं, देश में विदेश में कहीं भी रहते हैं, वो सारा का सारा जो वातावरण मिला है हमको, हमें पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार मिला है। और उन आत्माओं के साथ हमारे हिसाब किताब है पिछले जन्मों के, हमने उनके साथ कैसा किया है, जो किया हुआ है, जैसा किया हुआ है, वो सब कुछ हमारे सामने खुलने वाला है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा अचेतन मन या सुषुप्त मन, सोया हुआ मन। और इस जन्म में भी हम जो कर्म करते हैं, दो तरह के कर्म इस जन्म में होते हैं हमारे। एक तो कर्म होते हैं जो हमारी कुछ कर्मों के बारे में, जो हम विकारों के वश, जहां हमारे दिल में या मन में, बुद्धि में जो कुछ चीजें होती जिनके बारे में हमारा विकार के वश कोई कनेक्शन है, काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह अहंकार के वश। ब्राह्मणों में अभी काम विकार के वश कनेक्शन नहीं है, कितनी इच्छाओं के वश कनेक्शन है, इससे मेरी इच्छा ये पूरी होती है, लगाव है किसी के प्रति, लगाव, उसके साथ बैठना अच्छा लगता है, उससे बात करना अच्छा लगता है, झुकाव है उसके प्रति, प्रभाव, किसी का प्रभाव है, तो लगाव, झुकाव, प्रभाव। और कुछ व्यक्ति जिनको, जो हमारे खिलाफ चलते हैं, हमें बुरा बोल देते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, हमारी ग्लानी करते हैं, कई बार हमारी समाज में निंदा कर देते हैं, है ना, या हमें नीचा दिखा देते, किसी रूप में भी नीचा दिखा देते हैं, हमें पूछते नहीं, औरों को पूछते हमें नहीं पूछते हैं, उनके प्रति टकराव आ जाता है। तो चार बातें, लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव। ठीक है, चाहे लौकिक का हो चाहे अलौकिक का हो, लौकिक से भी हो सकता है और अलौकिक में भी हो सकता है, ब्राह्मणों का आपस में भी हो सकता है, क्योंकि हम भी आपस में 63 जन्म सभी आपस में साथ रहे हैं, भले आप कहीं भी रहते हो कि तो हम सबके सब किसी ना किसी जन्म में एक दूसरे के साथ परिवार में संबंध में आए हैं, तभी हम ब्राह्मण बने। ठीक है ना, तो ये चार बातें के आधार पे हमारी इच्छाएं जो है ना, ये क्या करती है, देखो हर ब्राह्मण में 3 असुर हैं, हर ब्राह्मण कितने असुर हैं, 3 असुर। कौन कौन से असुर हैं? एक तो भस्मासुर है, तीनों को मारने के पहले सच्चे ब्राह्मण ही बन सकते हैं ना। एक तो सबके अंदर क्या है, भस्मासुर है, क्या है, भस्मासुर। दूसरा कौन सा है, अकासुर, और तीसरा है बकासुर। सच्चा ब्राह्मण बाप का सपूत बच्चा बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को मारना पड़ेगा। भस्मासुर पता कौन सा असुर है, ये इच्छाएं, ये कामनाएं, मेरा थोड़ा नाम हो जाए, लोग मुझे पूछें, है ना, सब लोग मेरी इज्जत करें, है ना, ब्राह्मण परिवार में मुझे पूछें, है ना, तो इच्छाएं, कामनाएं, हमें ये चीज मिल जाए, एक कार आ जाए अच्छा रहेगा, एक साथ में अच्छा सा ये हो, अच्छा सा ये हो, है ना, तो ये जो कामनाएं है भस्मासुर है। बाबा मिला, हमारा क्या स्लोगन है, मेरा बाबा था ना, वरदान था ना, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, है ना, इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। जब तक हम इच्छा मात्रम अविद्या ना की स्थिति ना प्राप्त करें, इस भस्मासुर को ना मार दें, कामनाओं पर विजय प्राप्त ना करें, तब तक हमारा क्या नहीं हो सकता है, हमारी जो कमाई है ना, खजाने बढ़ेंगे नहीं, प्राप्तियां बढ़ेंगे नहीं, खजाने उतने के उतने ही रह जाते हैं, खर्च होते जाते हैं, बढ़ते नहीं, और बढ़ेंगे नहीं तो खुशी कहां से आएगी, खजाना बढ़े तो खुशी आएगी ना, खजाना बढ़ा ही नहीं तो खुशी कहां से आई, अमृत वेला भी किया, मुरली भी रखी, है ना, सब कुछ किया, भोजन का भी प्रयास किया, पवित्र भी रहे, है ना, किंतु खुशी नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि इच्छाएं, इच्छाओं के वश चल रहे हैं, है ना, सब कुछ खा जाती हैं, ये भस्म करती जाती हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर भी भस्म होता जा रहा है, कोई प्राप्ति नहीं हो रही, खुशी नहीं आ रही, चेहरे पे खुशी नहीं आ रही है, विक्रम विनाश नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हमारी योग अग्नि, योग ज्वाला का रूप नहीं दे रही है, अग्नि, योग अग्नि नहीं बन रही है, इच्छाएं क्या कर रही है, एक से ज्यादा की तरफ बुद्धि लेकर के जा रही है। तो जब ज्वालामुखी योग किसे कहते हैं, सिर्फ एक संकल्प, एक बाबा, दूसरा ना कोई, सिर्फ एक में समा जाए, एक में लवलीन हो जाए, वो है ज्वालामुखी योग, उसमें विक्रम विनाश होंगे ना, तो विक्रम विनाश तो हुए नहीं, खुशी कहां से आएगी, वो भी पुरानी बातें याद आती रहती हैं। तो ये जो है हमें बहुत ध्यान, भस्मासुर को मारना पड़े, सब कामनाएं सब इच्छाएं बाप के ऊपर कुर्बान है ना। जब हम बोलते हैं तन मन धन सब तेरा है ना, इच्छाएं कहां मन में आती है ना, जब मन दे दिया तो बाबा जो कहे सिर्फ वही तो इच्छा करनी है, दूसरी इच्छा करनी नहीं है उनको नहीं। तो मन जो है सबसे इंपॉर्टेंट इच्छा, अगर हमें चेहरे और चरण सेवा करनी तो पहले भस्मासुर को मारना पड़ेगा राइट। दूसरा अकासुर, अकासुर अकार से समझते हैं, अक माना अक, अक का फूल समझते हैं ना, अक का फूल क्या होता है, अक का फूल समझते हैं ना, अक जो शिवजी पे चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं ना, तो अक जो है जहरीला फूल होता है, कड़वा होता है। तो हमारे मुख से क्या निकलता है किसी के लिए, जो कड़वे बोल जहरीले बोल है ना, अकासुर है ना, मतलब कड़वा सोचना, जहरीला सोचना, जहरीला बोलना, ये इसको मार दो बिल्कुल। जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं सदा मीठा बोलेंगे, कितना भी कुछ हो जाए मीठा बोलेंगे, तो अकासुर को सदा के लिए मार दो, तब हमारे चेहरे और चलन के द्वारा सेवा होनी तो नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है राइट। क्योंकि एक बार आप गुस्सा करते हो ना, एक बार गंदा बोलते हो किसी के लिए, उस व्यक्ति के मन में 6 महीने के लिए छप जाता है। 6 महीना तो मैं कम कह रहा हूं, आपको तो अनुभव है, 6 महीने तो भूल ही नहीं सकता है वो, और 3 दिन तक आपका योग लगेगा नहीं, जब तक 3 दिन तक आपका योग नहीं, वो योग लगना चाहिए वो नहीं लगेगा, कितना मर्जी कोशिश कर लो, चाह के ऊपर चढ़ा के बैठ जाओ ऊपर है ना, कुछ भी कर लो, सिर्फ सिर में दर्द होगा, नींद आएगी, कुछ योग नहीं लगेगा, पावरफुल योग नहीं लगेगा। एक बार किसी से जहरीला गंदा बोला तो, कड़वा बोला तो, एक बार किसी के प्रति भी, अपने प्रति बोला है किसी और के प्रति बोला तो आपका योग पावरफुल लगेगा। इसे कभी भी ऐसा मत बोलो किसी के साथ, सोचो भी नहीं, बोलना दूर की बात है ठीक है। तो मार दिया कासुर को, जिन्हें कासुर को मारा हाथ उठाओ, कुछ लोग संभाल के रखना चाहते हैं ना, कुछ लोग दूसरों को देख रहे हैं, देखो उन्होंने उठाया कि नहीं उठाया, मैं भी उठाऊं कि नहीं उठाऊं ना। भस्मासुर को मार दिया, जिन्हें भस्मासुर को मारा हाथ उठाओ, कुछ लोगों ने नहीं मारा, अभी भी नहीं मारा उनके, वो अंदर रखना चाहते हैं ना। तीसरा है बकासुर है ना, बकासुर, बकासुर माना पता क्या होता है, बक बक होता है ना, बक बक माना व्यर्थ ना, नहीं व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, कोई मतलब नहीं है बोलने का सोचने का उस बारे में, आपके काम की बात ही नहीं है, फिर भी सोचे जा रहे हो मोदी मोदी प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है मोदी प्रधानमंत्री बने नहीं बने है ना, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा बनेगा नहीं बनेगा नहीं? अब आपका क्या फर्क पड़ता है, आपको रोज रोटी बनानी है नहीं, आपको रोज ऑफिस में जाना, दुकान पे बैठना नहीं बैठना, काम तो करना है नहीं करना नहीं? कुछ फर्क नहीं पड़ता है कोई भी बने नहीं, व्यर्थ मतलब व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, घंटों घंटों बैठ के सोचते रहना उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करता है, उसका संस्कार उसका स्वभाव करता है तो करने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। और वो भले अपने घर में, आपके घर में आपका बच्चा भी हो सकता है, आपकी आपके पति पत्नी भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, सास ससुर भी हो सकते हैं, उनका संस्कार स्वभाव है, आप उनको परिवर्तन सिर्फ अपने कर्मों से कर सकते हो, अपने चलन से कर सकते हो है ना, बोल के नहीं कर सकते हो। तो कहीं तुम्हारा बहुत सुना हुआ है, बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप चुप ही रहो तो अच्छा है ना, बोल भी देते हैं सामने ना साफ साफ, बोलते नहीं बोलते बोलते नहीं, माताओं को तो ज्यादा अनुभव है ना, अपने बच्चों को बोलती हो ना, कहते हाँ माता जी मम्मी बहुत सुना हुआ है आपका, आपकी आपकी देखा है आप तो इतना गुस्सा करती हो, आपसे तो कम गुस्सा मैं करता हूं, मुझे नहीं ऐसा ज्ञान सुनना, कर्मों से सिखाना है ना, बोल के नहीं सिखा सकते ठीक है। तो ये जो है हमको ध्यान रखना है, तो ये जो है, तो तीन असुर बकबैत, तो तीनों को मारना पड़ता है ठीक है। तो मन जो है, एक तो हमारा क्या सब, एक जो हमारा जो है एक सबकॉन्शियस माइंड भी है, इस जन्म में जो हम विकारों के वश डिसीजन नहीं ले पाते ना, जैसे किसी के ऐसा मोह है आपका, लोभ है, मोह है, अहंकार है या क्रोध है, किसको क्रोध किया हुआ है आपने, या किसी के प्रति थोड़ी कामना है, वो अच्छा लगता है, लगाव झुकाव है, प्रभाव है उसका, वो गलत कर रहा है, गलत कर रही है, फिर भी आप उसके सामने बोल नहीं पाते कि बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा, डिसीजन नहीं ले पाते, तो फाइलें कहां जाती हैं, वो सारी सबकॉन्शियस में जाती है। किससे डरते हो, नहीं बोल पाते हो, नहीं डिसीजन ले पाते हो, है ना, तो वो भी विकारों के वश डिसीजन नहीं लिया ना, तो फाइल कहां जाती है, सबकॉन्शियस माइंड। तो इस जन्म की जो चीज होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, जिसे चित्त कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में ना चित्त। तो तीन मन हो गए, अचेतन मन या सोया हुआ मन, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जो कि आपका इस जन्म का चित्त जिसे कहते हैं, और तीसरा है कॉन्शियस माइंड, राइट। तीनों में स्मृतियां भी हैं, वृत्ति भी हैं, भावना भी है, संकल्प भी है, राइट। अभी ये मन किस आधार पर कार्य करता है, मन बुद्धि के आधार पर कार्य करता है। बुद्धि क्या करती, बुद्धि क्या है, बुद्धि जो है आत्मा की जो इमीडिएट शक्ति है वो बुद्धि है, ठीक है। तीन तरह की आत्मा, जैसे बाबा ने बताया, सत्व प्रधान आत्मा जो होती है, एक सत्व प्रधान आत्मा, रजो प्रधान आत्मा और तमो प्रधान आत्मा। तो सत्व प्रधान शब्द कहां से आया है, सत्व माना सात, प्रधान माना भरपूर, जब आत्मा सात गुणों से भरपूर है तो उसको सत्व प्रधान कहते हैं। रजो माना श्याम, जब सातों गुण, सातों एनर्जी कहो आत्मा की, सातों लाइट आत्मा की आधी से कम हो जाती है तो उसे रजो कहते हैं। लाइट कम हो गई ना, श्याम हो गई तो आधी हो गई, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला हो गया, सफा रोशनी आधी हो गई, आधी से कम हो गई, उसे रजो कहते हैं। और तमो माना अंधेरा, रात, सातों जो एनर्जी लगभग ना के बराबर रह गई, ठीक है। तो जब आत्मा में जब सातों गुण भरे हुए हैं सत्युग में, तो सातों गुण जब भरे हुए हैं तो सत्व प्रधान आत्मा है, तो जो आत्मा के बुद्धि के भी चार एस्पेक्ट हैं, एस्पेक्ट समझते हैं, चार उसके क्या कहेंगे, उसके प्रारूप कहें हिंदी में, बहुत मुश्किल शब्द हो गया प्रारूप, मतलब पर एस्पेक्ट माना चार उसकी, चार प्रकार भी नहीं कहेंगे, चार उसकी, पता नहीं हिंदी में शब्द में समझ नहीं आ रहा, पर चार एस्पेक्ट समझ लो, चलो चार उसकी मतलब चार पार्ट तो नहीं कहेंगे, पार्ट तो रंग रॉन्ग शब्द है क्योंकि आत्मा में कोई पार्ट की बात नहीं है, किंतु चार उसके एस्पेक्ट हैं, चार उसके जिसके द्वारा मैनिफेस्ट करती है ना अपने कार्य को करती है बुद्धि। पहला जो पार्ट है वो है दिल, ये दिल नहीं है, ये तो शरीर का दिल है, इसमें कुछ नहीं, इसमें खून भरा हुआ है, सिर्फ चारों चैंबर में खून भरा हुआ है, इस दिल में कोई रहता नहीं है, ठीक है। तो सत्व प्रधान जो अंदर वाला दिल पार्ट है ना, जो बिल्कुल यहां आत्मा लगभग ढाई इंच अंदर, तीन इंच नीचे, यहां पर चमकता हुआ बिंदु है, बहुत अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, इन आंखों से देख नहीं सकते, दिखाई देगा भी नहीं, कुछ मर्जी करो इन आंखों से नहीं देख सकते हो, अनुभव की आंख से समझ सकते हो कि आत्मा है, ये ज्ञान की रोशनी है अंदर, ये रोशनी समझ सकते हो कि अंदर लाइट है, लाइट माना रोशनी, ये रोशनी ज्ञान की रोशनी है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। तो ये सात गुण निकल रहे हैं उससे, सात एनर्जी निकल रही है ना, और वो सातों में वो दिल भरपूर है। दिल को अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, ठीक है। बाबा उसको पलके भी कहते हैं, गोदी भी कहते हैं, ठीक है। और इसको बाबा कभी कभी, जो बाबा है ना, बाबा का दिल, दिल कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, वो सातों गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, हम वो कितना बड़ा हो गया उसका दिल सागर, कितना, इतना इतना थोड़ी ना, इतना भी कितना कहें, कितना कहें, साइज ही नहीं हम कह सकते कितना बड़ा है ना। आत्मा बिंदु है, परमात्मा भी बिंदु है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, किंतु उसका दिल कितना बड़ा है, बाबा कहते हैं बाबा का दिल तक कितना बड़ा है, उस पर सो सकते हो, उसी पे खाना खा सकते हो, उसी पे सैर कर सकते हो, सब कुछ उसी पे कर सकते हो, किंतु जो बाबा की श्रीमत पे चलता है वो उस दिल तक नशीन बनता है। राइट। और हमारा दिल कितना सा है? छोटा सा छोटा सा है ना, क्योंकि सात गुणी ना के बराबर है। बाबा के बच्चों के तो बढ़ते जा रहे हैं, किंतु आम जो दुनिया में लोग हैं उनका दिल कितना सा है? छोटा सा, छोटा सा दिल है, छोटी सी आशा ने, है ना। भस्मासुर भी है और दिल भी छोटी सी है ना, लोगों में तो यही हालत है ना। तो ये जो है दिल छोटी सी, क्योंकि सात गुण लगभग ना के बराबर, तमो प्रधान है ना, अभी तमो प्रधान नहीं है हम लोग। हम नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार धीरे धीरे रजो होते जा रहे हैं, रजो के हिसाब से फिर आगे सतो होते जा रहे हैं, ठीक है। और सतो के बाद सतो प्रधान हो जाएंगे, और फिर शरीर छोड़ के सतो प्रधान होंगे तो कर्मार्थी बन के, और आत्मा शरीर छोड़ के उड़ जाएगी बाबा के साथ, है ना। साथी बन के, बराती बन के, जो साथी बन के चलेंगे हाथ उठाओ, सभी साथी बन के चलेंगे, है ना। जो बराती बन के चलेंगे हाथ उठाओ, कोई भी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो दिल जो है कॉन्शियसनेस, तो सात गुण जब भरे हुए हैं तो दूसरी जो एस्पेक्ट है वो आत्मा दिल का, बुद्धि का, वो है विवेक। अंग्रेजी में कहते हैं विजडम। विवेक माना परखने की शक्ति। तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, ये सात गुण हैं। अगर दिल में सातों भरे हुए हैं तो विवेक कैसा हो जाता है हमारा? ईश्वरीय विवेक हो जाता है। कैसा हो जाता है? ईश्वरीय विवेक, ईश्वर जैसा, है ना। कहते हैं कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं देवताओं, क्या कहते हैं देवताओं को? इसलिए भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं सभी देवताओं को? भगवान, भगवती कहते हैं ना। लक्ष्मी क्या है? भगवती। और नारायण क्या है? भगवान। ऐसे कहते हैं भगवान भगवती। हर देवी देवता की पूजा होती है, क्यों? क्योंकि उनका विवेक कैसा है? ईश्वरीय, जैसे ईश्वर जैसा। विजडम माना परखने की शक्ति, वो राइट रॉन्ग को तुरंत परख सकते हैं। और फिर विजडम के आधार से निर्णय शक्ति, उसे कहते हैं बुद्धि। वो है बुद्धि प्रॉपर, जिसे कहते हैं भाई रियल बुद्धि जो कहें ना, वो बुद्धि। तो बुद्धि दिव्य है। दिव्य माना दैवी गुणों पर आधारित। दैवी गुण क्या होते हैं? ये जो सात सात गुण है ना, सात गुण है, जैसे दुनिया में रंग, तीन रंग होते हैं प्राइमरी, नीला, लाल और पीला। इन तीन रंगों के मिश्रण से बहुत सारे रंग बना सकते हो, सेकेंडरी का रंग बना सकते हो, 150 के आसपास सेकेंडरी रंग बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह सात जो गुण है आत्मा के, सात एनर्जी है आत्मा से निकलती रहती है, इसके आधार पे इसके डिफरेंट मिश्रण से बहुत सारे दैवी गुण बन जाते हैं। जो सबसे पहला दैवी गुण कौन सा? सत्यता, ट्रूथफुलनेस। सत्यता माना अपने ओरिजिनल अनादि आदि पावन सतो प्रधान स्थिति में स्थित होके हर संकल्प, बोल और कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, सोपन में आना, किसी बुराई व अवगुण को संकल्प, बोल व कर्म से टच ना करना, यह है सत्यता। सत्यता माना सच बोलने की बात खाली नहीं है, सत्यता माना अपने सत्य स्वरूप में टिके रहना। अपना सत्य स्वरूप कौन सा है? अनादि परमधाम वाला और आदि सत्य उत्तरेता वाला, उसमें टिके रहना हमेशा। उसमें टिके हर संकल्प करना, बोल बोलना, कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, परिवार में कार्य करना, गृहस्थ व्यवहार में कार्य करना, ऑफिस में कार्य करना, दुकान पे कार्य करना, और उसी अनुसार स्वप्न देखना, ठीक है। पवित्रता दूसरा जो है दैवी गुण, क्या है? पवित्रता। तीसरा है निर्भयता। निर्भयता माना मैं आत्मा हूं तो मरने का डर है क्या? बूढ़ा होने का डर है क्या? बीमार होने का डर है ही नहीं, डरी कोई नहीं है। तो ये जो है, जो ये निकल गया ना, तो ये जितना जितना हम करते जाते तो हमारा ये स्थिति बनती जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? तो सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, मतलब निर्भयता। आत्मा जब मैं अपने को आत्मा समझता हूं, परमात्मा की संतान, तो मेरी एक आंख शांति धाम में लगी हुई है और दूसरी आंख में सुख धाम। मतलब मेरी आंख जो है एक तो घर में है और दूसरी राजधानी में है। ये आंख की बात नहीं है, आत्मा की आंख कहां लगी हुई है? एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। निर्भयता, डर ही नहीं है ये विनाश होता, अभी शरीर छूटे अभी छूट जाए, अभी तुरंत छूट जाए, कोई हर्जा नहीं है। दुनिया विनाश होता अभी हो जाए, क्योंकि मेरी मेरी बुद्धि कहां है? बुद्धि रूपी आंख कहां लगी है? यहां नहीं है, इस देह में नहीं है, देह के संबंधों में नहीं है, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों में नहीं है, बुद्धि वहां लगी है। तो निर्भयता है ना, अंतर्मुखता, अंदर देखते रहना मैं कौन हूं, अंतर्मुखता। एक सेकंड में जैसे डिटैच में शरीर आत्मा हूं, एकांतवासी, एक के अंत में खोए रहना, ज्ञान सागर के अंत में खोए रहना, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, रूहानी प्यार का सागर, अतिंद्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर है ना, उसके अंत में खो जाओ एकाग्रता, फिर उसी में बुद्धि को, मन बुद्धि को एकाग्र रखना। एक नामी, सिर्फ जो कुछ बात हो मन में, तन में, धन में, कुछ ऊपर नीचे होता है, किसी और का ध्यान मत करो, उससे पूछो। एक नाम, एक व्रता, व्यर्थ से इकोनॉमी, एक रस्ते। फिर तो बहुत सारे हैं, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, निमित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, सम्मान में लेकर सबको सम्मान देना, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार, है ना। 26 तो मैंने बता दिया आपको, है ना, ऐसे 56 है ना, ऐसे बहुत सारे आगे हैं, कहो तो बताऊं, 56 भी बताऊं, मैं तो बहुत सहज है बताना, पर आप 26 तो याद कर ही लो, है ना। तो ये दैवी गुण, मतलब दैवी गुणों पर आधारित बुद्धि, तो ये दिव्य बुद्धि। तो जब भी कोई बात हमें सामने आती है ना, ऐसे ऐसी आत्मा के सामने, दिल में गई, सबसे पहले इस दिल में गई, विवेक ने तुरंत एक सेकंड में, ईश्वरीय विवेक है, एकदम निर्णय किया, परखा, बुद्धि ने, दिव्य बुद्धि निर्णय किया, चित्त में क्या हो जाएगा, अब जो दिल में वो चित्त में, सबकॉन्शियस में क्या जाएगा, जो दिल में, इसे कहते सत्य चित्त आनंद, दिल में अगर सत्य है तो चित्त में क्या है, आनंद है। आनंद ना, हमारा चित्त क्या हुआ, शांत, एकाग्र और आनंदमय। और कॉन्शियस माइंड में क्या जाएगा, जो सात गुण दिल में है वही कॉन्शियस माइंड की स्मृतियों में भर जाएगा, ज्ञान माना ज्ञान भर जाएगा, ABCD। ज्ञान का सार रूप में क्या है, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, कनेक्शन है ना, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन। और D4 ड्रामा, संसार एक नाटक है, इसमें हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, परमात्मा इसका डायरेक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला बहुत अच्छा। क्या अच्छा होने वाला है, हम ही देव देवता बनने वाले, सत्युग में जाएंगे, सोने हीरे के महल बनेंगे, और अभी अच्छा क्या हो रहा है, बाबा की गोद में बैठे, सदा बाबा के साथ हैं, बाबा के बगैर हम रह नहीं सकते, बाबा हमारे बगैर रह नहीं सकता, रह सकता है क्या, रह नहीं सकता। तो ये स्थिति है ना, बार बार अभ्यास, तो ये जब हम रहते हैं सत्व प्रधान बुद्धि, तो तब ये स्मृति, स्मृति में ये रहेगा, ABCD रहेगा, मतलब बाबा की स्मृति रहेगी, वृत्ति सबके प्रति आत्मिक होगी, भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, संकल्प कैसे होंगे, श्रेष्ठ, शुद्ध, शक्तिशाली और कल्याणकारी, उनका असर कहां पर, सारे विश्व में जाएगा। तो चेहरे पे क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, चेहरे पे क्या दिखाई देगा, स्मृति क्या होगी, चमकेगा ना, स्मृति रूपी तिलक चमकेगा ना, यहां पर आत्मा तिलक चमकेगी ना, वृत्ति कहां से दिखाई देगी, आंखों से, वृत्ति जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, तो आंखों में दो बड़े बड़े बल्ब दिखाई देंगे, है ना, नहीं, आत्मिक वृत्ति दिखाई देगी ना, आत्मिक वृत्ति, भावना सबके प्रति शुभ भावना, वाइब्रेशन, हमारे रोम रोम से वाइब्रेशन निकलेंगे, खाली चेहरे से नहीं, पूरे रोम रोम से वाइब्रेशन निकलेंगे। और संकल्प कैसे चलेंगे, शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली और कल्याणकारी, तो क्या होगा, सारे विश्व में वाइब्रेशन फैलेंगे, ठीक है। हमारी ये बॉडी क्या बन जाएगी, लाइट की बॉडी, सातों गुण भर जाएंगे ना, अंग अंग में भर जाएंगे, रोम रोम में भर जाएंगे। तो इस तरह से, तो जितना हम इस बात का अभ्यास, अपनी बुद्धि को सत्व प्रधान बनाते जाएंगे, दिल में बाबा को, दिल में जो आज वरदान था ना, मेरा बाबा, दिल में बाबा को बिठाते जाओ, जितना अधिक बाबा को, जो बाबा की मुरली है ना, उसको दिन में बार बार रिवाइज करो, मनन करो, चिंतन करो, मंथन करो, सिमरण करो। 6 स्टेप होते हैं मुरली सुनने के, पहले श्रवण, बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनना, सूक्ष्म मंथन में बैठो बाबा की गोद में, फिर उसका मनन मन रिवाइज करो बार बार, फिर चिंतन करो, अपने से मिला के देखो, बाबा ने ये कहा, मैंने, मेरे में तो नहीं है ये बात, इसको मैंने, मुझे पालन करना है, इसको अपने जीवन में लाना है, चिंतन करते जाओ, चिंता लगा दो, चिंता नेगेटिव होती है, चिंतन पॉजिटिव होता है, और मंथन, फिर घिसो उसको अंदर अंदर, मथो, बाबा ने कहा ऐसे कहा, फिर बाबा से बार बार बात करो, बाबा ये कैसे, बाबा ये कैसे, बाबा से बात नहीं होती किसी और आत्मा से पूछो, है ना, रूढ़ ध्यान करो, जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं बाबा के उनसे बातचीत करो, तो इस तरह से मंथन करो, फिर उसमें जूस निकलेगा, मक्खन निकलेगा, उसका फिर बार बार सिमरण करो, मतलब खाओ उसको बार बार, ठीक है, उस मंथन करो और फिर स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, फिर हमारे जीवन का अंग बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अभ्यास करते करते चेहरा और चलन, फिर उसी अनुसार हमारे कर्म होंगे। तो इसके लिए चार नियम, अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला, अपने विक्रम विनाश करने का समय है, मुरली, आठ बजे चुप रहो, बाबा की मुरली को अध्ययन करते रहो, कल की मुरली को सुनो, आज की मुरली सुनो, कम से कम दिन में 21 बार मुरली रिवाइज करो, कितने बार, 5 बार तो कम से कम पढ़नी चाहिए, और 21 बार मतलब कम से कम मुरली के जो पॉइंट है ना, एक एक लाइन, आज का वरदान, आज का स्लोगन, आज का बाबा ने मीठे बच्चे क्या कहा, कोई अच्छी लाइन बार बार रिवाइज करो, फिर उसको बार बार मनन करो, मंथन करो, चिंतन मंथन करते जाओ, है ना, क्योंकि जैसी स्मृति होगी फिर वैसा ही तो स्वरूप बनेगा ना, वैसे ही तो हमारी वृत्ति और भावना संकल्प बनेंगे। तो जितना बार बार रिवाइज करेंगे तो मन को परिवर्तन करने का साधन ये मुरली है, ये मुरली ही हमारी माँ है, ब्रह्मा हमारी माँ है, और सेकंड माँ कौन सी है हमारी, ये मुरली, जो हमारी प्यार से पालना करती है। तो सदा माँ की गोदी में चिपके रहो, है ना, मुरली को कहाँ रखना चाहिए, दिल के पास ना, ये बाबा का लव लेटर है ना, जैसे जेब में यहां रखो तो कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, हम दिल वालों को यही बताते हैं हार्ट पेशेंट्स को, इसको सदा दिल के पास रखो, और लव लेटर बार बार निकाल के एक एक लाइन बाबा की रिवाइज कर लो, बाबा ने याचिका निकालो, जब कोई देख नहीं रहा निकालो, मुस्कुराओ, फिर जेब में वापस छुपा के रख लो, नहीं ऐसे दिन में बार 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 ये प्यार बाबा से कर, यही बाबा से प्यार है, जितना बाबा की मुरली पे चलेंगे, बाबा का कहना मेरा करना, तो ये अभ्यास करते चलो, तो धीरे धीरे मन हमारा परिवर्तन होगा मुरली से, राइट। तो अमृत वेला, मुरली, फिर सारा दिन मुरली बाबा रिवाइज करो, और सोने के पहले बाबा को चिट्ठी लिखो, सारा पोता मेल दो, चार्ट भरो, बाबा की गोद में सो जाओ, ये चार नियम है, अगर अपने मन को हमें ऐसा बनाना है, चेहरे चलन सेवा करनी है, और चार परहेज है, परहेज को मर्यादा है, पवित्रता, जितना ज्यादा पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी पवित्रता, वैध संकल्प आना भी है पवित्रता, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों, हर एक का अपना ड्रामा में पार्ट है ना, हर एक का अपना पार्ट, हमें क्वेश्चन रेज करने का मतलब क्या है, ड्रामा बाबा ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया, तो बाबा जाने सब कुछ, तो वो ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो उस पर कभी क्वेश्चन रेजना, ये भी अपवित्रता हो जाती है। शुद्धन, बाजार का, होटल का, रेस्टोरेंट का, किसी और के हाथ का खाना, बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद, शुद्ध सात्विक भोजन, तला हुआ पराठा, पकौड़ा, समोसा, मिठाइयां, ये राजसिक भोजन, आलस होता है इससे, अलबेलापन पैदा होता है, प्याज लहसुन खाने से उत्तेजना पैदा होती है, बासी खाने से, अचार खाने से उत्तेजना पैदा होती है, ये सब नहीं खाने चाहिए, ठीक है। तो सात्विक भोजन, फल, सब्जियां, अंकुरित रोटी, सब्जी, दूध, है ना, बस ये टाइम पे खाओ, चबा चबा के खाओ, बाबा की याद में खाओ, राइट, शुद्ध सात्विक भोजन खाओ। सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग, सिर्फ मैं हमेशा क्या करता हूँ, ABCD करो, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, ई माना एक्स्ट्रा मत करो, एक्स्ट्रा माना मन मत पर मत, किसी गुरु ने बताया प्राणायाम कर लो, ये मुद्रा लगा के बैठ जाओ, हमें कोई आवश्यकता नहीं है मुद्रा लगाने की, प्राणायाम करने की, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बाबा की याद में सैर करो 45 मिनट, है ना, सुबह सुबह नहा धो के मुरली के बाद, सर्दी में मुरली के बाद और गर्मी में मुरली से पहले, ठीक है। तो बाबा और मुरली, एफ माना फोर्स, फोर्स भी यूज मत करो, किसको जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो, अपने कर्मों से बदलो, बच्चों को स्पेशली परिवार वालों को जबरदस्ती मत करो, और फिर दैवी गुणों में व्यवहार, मैंने बताया दैवी गुणों का व्यवहार, ये जो दैवी गुणों में व्यवहार करो, गुस्सा एक बार किया 3 दिन तक स्थिति खराब रहेगी, एक बार मूड ऑफ किया 5 दिन तक स्थिति खराब रहेगी, जल्दीबाजी की तो 18 घंटे तक स्थिति खराब रहेगी, किसी के प्रति मन में गलत भाव रख लिया तो जब तक उसको माफ नहीं करोगे तब तक वो भाव खराब ही रहेगा, योग लगेगा नहीं, ठीक है, सबको माफ कर दो, ओके। तो चेहरे और चलने द्वारा क्या होगी, 24 घंटे सेवा होती रहेगी, इसे कहेंगे मनसा सेवा, चलन हमारे कर्म भी ऐसे हो जाएंगे। ओम